नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूले के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूले में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।